أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاك بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ترجمہ: ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، الا اذا تمنا، جب انہوں نے کوئی خیال باندھا، یعنی کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی وش کیا. الک الشیطان فی امنیتی، تو شیطان نے اپنی طرف سے ان کے خیال یا ان کی تلاوت میں کچھ ملا دیا. پھر جو شیطان ملا دیتا ہے اس کو اللہ ختم کر دیتا، مٹا دیتا ہے اپنی سچی باتوں کے ذریعے، اور اپنی باتوں کو قائم رکھتا ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا. ترجمہ کو سمجھ میں آتا ہے کچھ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بات ترجمہ، اف یو انڈرسٹینڈ ترجمہ. جی، کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول کوئی نبی، مگر جب کبھی کوئی نبی کوئی آرزو کرتا ہے، کوئی وش کرتا ہے، کوئی خیال کرتا ہے، تو شیطان ان کے خیال میں داخل ہو جاتا ہے، نبی کے خیال میں، توف میں، تھنکنگ میں داخل ہو جاتا ہے. سو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیطان کے خیال کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ جلیل ما یلقی الشیطان، اس بات کو جو شیطان نے ڈالی ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ، یہی وہ آیت ہے جس کو اینمیز، دشمن، کافر لوگ اسلام کے خلاف کوشچن کرتے ہیں کہ تمہارا قرآن صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو ان پر اتری ہے صحیح نہیں ہے. سلمان رشدی نے بھی اسی بات کو لکھا ہے قرآن کے اگینسٹ میں. آج سے 4-5 سال پہلے مانچسٹر سے بی بی سی نیوز پر بھی ایک وائٹ آدمی نے اسی بات کو لے کر قرآن پر اعتراض کیا، اور کیا کہا؟ قرآن، میں تم کو ایسے تفسیر کرتا ہوں کہ ہر شاعر بات سمجھ میں آئے. وہ کہتے ہیں قرآن اللہ کی طرف سے بھی وحی آتی تھی اور شیطان کی بات بھی اس میں داخل ہے. اب تو قرآن پر کوئی بھروسہ نہیں رہے گا. پھر لوگوں نے ٹرسٹ دا قرآن، اصل اسٹوری کیا ہے؟ پہلے بہت سارے مفسرین بھی اس اسٹوری میں پھنس گئے، انہوں نے لکھ دیا صحیح بات کیا ہے اور غلط کیا ہے. پہلے کیا لکھا ہے مفسرین نے اس کو بیان کرتے ہیں. Let's see first what they wrote it. دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس، چونکہ میں اور آپ قرآن پر اتنی محنت نہیں کرتے ہیں، ہم تو بس آدھا پونا گھنٹے قرآن کی تفسیر میں بیٹھ جاتے ہیں. We don't make lots of effort to understand the Quran. Non-Muslim Quran پر بہت محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ. مولانا عبد الماجد دریا آبادی کو خط لکھا، مولانا سعید اکبر آبادی نے کینیڈا سے، He wrote, Maulana Daryabadi was living in India. India mein rehte the. Aur Maulana Saeed Saab, he was in Canada. He was a student of Maulana Anwar Shah Saab Kashmiri Rahmatullah. He wrote the letter ke Canada mein mujhe bhi log bayan ke liye bulate hain. Aur wahan par non-Muslim zyada hote hain. Lecture. Aur wo Quran ke khilaab discuss karte hain. हदीस के खिलाफ कुछ बात बोल के तो ये क्या करूं। उस वक्त मौलाना सईद अकबराबादी ने लिखा कनाडा में 1960 में 1960 में जब मैं भी पैदा होने ही था खत लिखा 1960 में 60 बड़े बड़े गोरे डॉक्टर जमा हुए दे गॉट टुगेदर एंड दे हैड अ मीटिंग उसमें एक का नाम मार्गुलिट है मशहूर आदमी है मार्गुलिट इसने सब डॉक्टरों को जमा किया ये मार्गुलिट है ना जिसने इस्लाम में पीएचडी किया है गोरा उसने इस्लाम के अंदर में पीएचडी किया है और ये जितने भी डॉक्टर यहां जमा हुए हैं सबने पीएचडी की है इस्लाम में मैं और आप तो इस्लाम को जानते भी नहीं इतना बेसिक टॉप टॉप ये लोग अंदर में डीप उन 60 डॉक्टर्स ने मिलकर गॉट टुगेदर और उन्होंने फॉर 18 इयर्स सबने मिलकर 18 साल तक हदीस के ऊपर मेहनत की इसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी हदीस है बुखारी मुस्लिम तिर्मिजी अबू दाऊद फुला 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 जितनी भी हदीस किताब है वो सबसे उन्होंने हदीस ली और इस तरीके से उसको जखीरा बनाया कि आपको अगर तलाश करना है कि लफ्ज जन्नत द फॉर एग्जांपल जस्ट गिव एग्जांपल द वर्ड ऑफ जन्नत कितनी हदीस के अंदर में है You just write Jannat. तो जितनी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन हदीस में जन्नत का जिक्र किया वो सारी तुम्हारे सामने है इतनी बड़ी मेहनत की उन्होंने It took 18 years. 18 साल तक उन्होंने मेहनत की है और वो भी नॉन मुस्लिम लेकिन इस्लाम की पीएचडी की है हम तो वैसे भी कुरान के तफसीर में नहीं बैठते वो तो रात दिन मेहनत करते थे और इतनी अगर तुम्हें तलाश करना है कि लफ्ज अल्लाह कौन कौन सी हदीस में है जस्ट राइट अल्लाह सो वो जितनी हदीस जिसमें अल्लाह है सब तुम्हारे सामने है बुखारी में कितनी हदीस है मुस्लिम शरीफ में कितनी हदीस है तिर्मिजी में कितनी अबू दाऊद शरीफ ऐसी मेहनत की है उन लोगों ने और वो इस्लाम पर इतने ज्यादा क्वेश्चन करते हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता अभी हमें शेख हनीफ साहब आए थे वो सुना रहे थे हिंदुस्तान में 5 या 6 कुछ उलमा है वो आरएसएस की ऑफिस में बैठकर इस्लाम कुरान और हदीस के खिलाफ क्वेश्चन निकालते हैं अगेंस्ट द कुरान अगेंस्ट द इस्लाम अगेंस्ट द हदीस उलमा मिलकर वो क्या करते हैं क्वेश्चन ये एतराज किया जाए ये क्वेश्चन किया जाए ये गलत है ये गलत है ये गलत है तो जब उनको कहा गया अब आप ये काम क्यों करते हैं तो उन्होंने क्या तुम लोग हमें 1 लाख रुपया वेजेस देते हो तुम हमें 1 लाख रुपया तुम तो 10,000 देते हो ये हमें 1 लाख देते हम ये काम करें इनके लिए अपने ही लोग इस्लाम के खिलाफ ये सारी बातें तफसीर में नहीं मिलती भाई बात सुन में आ रही है ना हाँ लोग इस्लाम के खिलाफ कितनी मेहनत कर रहे हैं इसलिए मैंने कहा कि कुछ साल पहले बीबीसी पर एक गोरे ने ये पूरी सीरत बयान की मैं सीरत बयान करता हूं और उस सीरत में उसने इसी वाकये को बयान किया जो इस आयत के तहत में नकल किया इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर बगवी में राजी ने लिखा है रुलमानी ने लिखा है बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इसको लिखा है अब वो क्या वाकया है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु नरेट सरीस उन्होंने ये वाक्य लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे कुरेश के मजमे में बैठे हुए थे, इन द गैदरिंग ऑफ कुरेश, जलसा था उनका कुरेश, उसे बैठे हुए थे। अचानक ये पांचवी नबूवत है, हिजरी नहीं, नॉट आफ्टर हिजरत, बिफोर हिजरत नबूवत, पांच नबवी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिटिंग अमंग्स देम, और वहां मक्का में सूरह नजम उतरी। सूरह नजम जिब्रील अलैहि सलाम लेकर आए। जब वही खत्म हो गई, सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने सूरह नजम पढ़ी। सूरह नजम दो तीन रुकू किए, उसको पढ़ा, उसमें काफिर भी बैठे हैं, साहबा भी बैठे, साहबा के नाम बैठे हुए हैं मजमे में, गैदरिंग में। जब इस आयत नंबर 19 पर पहुंचे, अफरअइतुमुल लात वल उज्जा व मनात सालिसतल उखरा, उसमें लात बूट का जिक्र है, लात वल उज्जा, उज्जा का जिक्र है। ये उज्जा को बहुत मानते हैं, ये मालदार लोग कहते हैं ये माल देता है, माल की देवी है, हमें माल चाहिए इस बूट के पास जाओ, माल देता है। इसीलिए तो अबू सुफियान ने बदर में कहा था, लना उज्जा लात व उज्जा, हमारे पास तो लात और उज्जा है मोहम्मद, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, यू डोंट हैव एनी गॉड, यू गॉट द लात एंड उज्जा, और हुबुल आला हुबुल, हुबुल की जय हो, नारे तकबीर लगाई उस अबू सुफियान। अल्लाह के नबी ने कहा, उमर जवाब नहीं देना, खामोश, ओहद में जवाब नहीं दिया। फिर जब उसने कहा ना, हमारा तो लात और उज्जा, मोहम्मद किधर है, खत्म हो गए, फिनिश्ड, अबू बकर फिनिश्ड, नाउज बिल्ला, उमर, तो अब नबी साहब का उमर जवाब दो, अल्लाह हमारा मौला है, वला मौला लकुम, तुम्हारा नहीं, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा नहीं है, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, इसके मुकाबले में लना उज्जा ला तबल उज्जा के जवाब में अल्लाह के में कहो उनको, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, तुम्हारा नहीं है, हमारा अल्लाह तो, तुम्हारा तो लात और उज्जा बुत है। ये लात और उज्जा का जब नाम पढ़ा ना, ये मैं तुमको पहले हदीस सुनाऊं तो फिर बाद में उसका जिक्र करता हूं, ये जो लिखी इब्ने अब्बास ने, बात पूरी समझना, गलत नहीं समझना, इसलिए कि अगर जाहिल आदमी इस वाक्य को पढ़ता है तो इस्लाम से निकल जाएगा, वो कहेगा कुरान सच्चा नहीं, वो कहेगा नबी सच्चे नहीं, नाउज बिल्ला, वो कहेगा नाउज बिल्ला वही सच्ची नहीं। इसलिए मैंने बहुत सोच कर ये बात तुम्हारे सामने आसान उर्दू में और इंग्लिश मिलाकर बोलता हूं ताकि बात समझ में आ जाए, अगरचे तुम थोड़े लेकिन बहुत लोग सुन रहे हैं मिक्सर उलमा कर सब दुनिया में, तो मैं तुम्हें बहुत सोच समझ कर बता रहा हूं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इस रिवायत को नकल किया, बहुत सारे मुफस्सिरीन इसको बयान कर दिया है। अब उसमें जब इस आयत पर पहुंचे, आयत नंबर 19 और 20 पर, तो उस वक्त कह रहे हैं शैतान ने दखल अंदाजी की, क्या मतलब, ही इंटरफियर्ड विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द टंग ऑफ रसूलुल्लाह, और ये सेंटेंस निकल गया नबी की जबानी, जिसको जलालैन ने भी नकल कर दिया है, बाल मुफस्सिरीन फिसल गए, नकल कर दिया, तिलकल घरानी कल उला फइन शफाअतहुन लतुर्तजा, तिलकल घरानी कल, हमारी ये देवियां बहुत ऊंची है, ये देवियां बहुत, देवी यानी लाट उज़्ज़ा, बहुत दर्जा उनका बहुत बड़ा है, और उनकी शफात कबूल की जाएगी। वो जितने काफिर बैठे थे खुश हो गए, और आज तो मोहम्मद ने हमारी तारीफ कर दी, हमारे बूटों की, हमारे आइडल्स की, हमारे गॉड की तारीफ कर दी। और ये सूरत खत्म होती है तो क्या आता है वहां पर, सजदा आता है। तो जब सजदे वाली आयत पड़ी ना, तो सारे सहाब नबी सासन सजदे में चले गए, सहाबे किराम भी सजदे में चले गए, उनको देखकर सारे खुशी के मारे वो काफिर भी सजदे में चले गए। बात समझा रही है, अब ये बात बहुत फैल गई कि मक्का के सारे लोग मुसलमान हो गए, सिर्फ दो आदमी सदके में नहीं गए, वलीद बिन मुगैरा नहीं गया, साथ सईद बिन वक्कास, सईद बिन आस नहीं गया। ये वलीद बिन मुगैरा ऐसी मिट्टी ली उसने और यहां लगा दिया, बस काफी है मेरे लिए, मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, आई डोंट हैव टू टच माय फोरहेड टू द ग्राउंड, जस्ट सैंड लिया और यहां लगा दिया। वलीद बिन मुगैरा, सहाबी फरमाते मैंने उसको देखा बदर में मारा गया, बहुत तकब्बुर था उसमें, ही हैड लॉट्स ऑफ प्राइड। मेरी बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं जी? फैल गया रूमर, सारे मक्का वाले मुसलमान हो गए, यहां तक कि ये बात पहुंच गई पर्शिया, एब्सिनिया, हबशा, वहां जितने साहबा माइग्रेट करके चले गए थे हिजरत करके, वो भी वापस आ गए कि अब तो मक्का मुसलमान, चलो अपने घर चलो। ये रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने नकल की है। क्या उसमें कहा कि नबी की जबान पर शैतान ने ये अल्फाज डाल दिए? नाउज़बिल्लाह। हालांकि शैतान कभी भी नबी की जबान पर ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी, शैतान आगे से आ सकता है ना पीछे से, मेरे नबी के कुरान में। और कुरान में क्या है, इन इबादी लैस लक अलैहिम सुल्तान, मेरे नेक बंदे जिस पर शैतान का कंट्रोल नहीं हो सकता, या तो इमाम अंबिया है, नबी है, उन पर कैसे कंट्रोल होगा, नबियों के नबी है। तो सबसे पहली बात यह है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास जब यह सूरत उतरी, सूरत नजम एंड द स्टोरी हैपन, जब यह उतरी है उस वक्त 3 साल के थे, अभी तो कितने साल के थे, 3 years old, तो उनको कैसे पता चले 3 years old? इसलिए, और ये सूरत है जो मैं पढ़ रहा हूं अभी, जहां ये आयत पढ़ी है, सूरह नजम है, मक्का में उतरी 5 हिजरी में, और उस वक्त अब्दुल्ला इब्न अब्बास नरेश द स्टोरी, वो कितने साल के थे, 3 साल के, 3 साल के बच्चे को क्या पता होगा। और ये सूरत जो मैं आपके सामने जो भी आयत पढ़ी, ये उतरी है बदर से पहले, और बदर हुआ है मदीना मुनव्वरा में आफ्टर हिजरत, सो नियरली 8-9 years, 5 से गिनो तो 13 साल के बाद तो हिजरत की है ना, तो ये 8 और ऊपर से 1 साल मदीना मुनव्वरा का, फिर बदर हुआ 1 साल के बाद, तो 9 साल तक क्या किसी सहाबी को पता ही नहीं चला इस वाक्य का? नो वन नोस, ओनली अब्दुल्ला इब्न अब्बास को पता था, 9 years हो गए। इसलिए सारे मुहद्दिसीन फरमाते ये रिवायत झूठी है। ये रिवायत क्या है भाई? लाई रिवायत, झूठी रिवायत है। क्यों? मक्का वाले डर गए कि लोगों में मशहूर हो गया कि हमने सजदा किया, हम मुसलमान हो गए, तो हम इस बात को कैसे छुपाएंगे? तो उन्होंने ये बात कह दी कि नबी ने हमारी माबूद की तारीफ की, झूठ मिला दिया। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बूटों की तारीफ नहीं कर सकते। सारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ये रिवायत। और अगर मैं आपको कहूं भी चलो इस रिवायत को, जैसे इब्न हजर वगैरह कहते हैं कुछ कुछ हिस्सा, सारा नहीं कुछ, अगर इसको सही भी मान लिया जाए कि ये रिवायत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की करेक्ट है, ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक तो नहीं है, ज़ईफ, चलो रिवायत है सही, फिर भी हम इस रिवायत को एक तरफ रख देंगे, नहीं मानेंगे जहां मेरे नबी पर कोई आंच आती हो, मेरे कुरान, अल्लाह के कुरान पर कोई सवाल उठता हो, कोई उंगली उठती हो, या मेरे नबी की आने वाले ऊपर वही के ऊपर कुछ, तो हदीस एक तरफ हो जाएगी और हम किसको प्रेफरेंस देंगे? नबी को, वही को, अल्लाह। तो मेरी बात सुन आ रही है? हाँ, ये बहुत ही बारीक बात है। कुरान की जो बहुत सारी आयत जो मुश्किल है ना, उसमें से एक आयत मुश्किल है, यही आयत सलमान रुश्दी ने लिखी है। सलमान रुश्दी ने इस्लाम पर इसी से एतराज किया, उसने भी कहीं से पढ़ा होगा, और बहुत सारे मुफस्सिर ने भी इस वाक्य को नकल कर दिया, अगरचे उन्होंने बाद में लिखा है कि सनद ज़ईफ फुला है फुला है फुला है, लेकिन ये बिल्कुल झूठी रिवायत। और अगर मान भी लिया जाए, चलो हम मान लेते हैं, تو بھی جب میرے نبی کی ذات پر کوئی سوال ہو تو ہم حدیث کو ایک طرف رکھ دیں گے, میرے نبی آ گئے, مائی نبی از گوئنگ ٹو کم فیس, ان کی ذات پر کوئی, ہاں بہت ضروری ہے, جیسے قرآن اعلیٰ نبی بھی اعلیٰ ہے, جیسے قرآن نصاب ہے اور نبی قرآن کے معلم ہیں, استاد بن کر آئے ہیں, استاد غلط پڑھائے گا تو پھر کیا ہوگا, اور وہ بھی اللہ کا پڑھایا ہوا ہے, وہ کیسے غلط کر سکتے ہیں. اس لیے اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بہت جلد ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا. یہاں پر دیکھیے, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ, دوسرا, چلو ہم ترجمہ کرنے کے بعد پھر ایک اور بات کہہ دیتا ہوں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. یہاں پر دوسری بات بتاتا ہوں, شیطان نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ, ایک تو ہو گئی کہ یہ روایت بالکل جھوٹی ہے, جواب ہو گیا. دوسری بات, دوسرا جواب, شیطان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات بیان فرماتے تھے تو وہ کیا ہے, وسوسہ ڈالتا تھا. کیا ڈالتا تھا؟ وسوسہ. یہ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کو جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے قرآن کریم نے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. دیکھا ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان کو کیا بنایا, دشمن. وہ تو سب کا دشمن ہے, سب اللہ کا ہے تو نبی کا بھی ہے, میرا بھی آپ کا, سب کا دشمن. ان شیطان عدو مبین, سب کا دشمن ہے, تو وہ تو کوشش کرے گا. لیکن دوسرا جواب سن لو, بہت ضروری ہے, یہ میں نے آج اتنی تفسیر اٹھائی, یہ دو چار جواب تلاش کرنے کے لیے میں 6 گھنٹے لگے ہوں گے اتنی بات کے لیے, مجھے lots of effort that to find, یہ کوئی ایزی بات نہیں ہے. اور کئی مفسرین کی تفسیر میں نے آن لائن دیکھی, میں نے گھر میں دیکھی, 6-7 تفسیر دیکھی, گھر میں 9 تفسیر بن گئے, تمام کا ایک خلاصہ چھوٹی سے آدھے گھنٹے میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. دوسرا جواب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت پڑھتے تھے تو شیطان نبی کے منہ میں وسوسہ نہیں ڈالتے تھے, نبی کے دماغ میں نہیں, ان کفار اور مشرکین کے دماغ میں وسوسہ ڈالتے تھے, اور قرآن میں اس کا ثبوت ہے. جیسے قرآن میں کیا کہا, حرمت, اللہ کے نبی نے پڑھا, حرمت علیکم المیتۃ, تم پر مردہ جانور کھانا حرام ہے. The animal who died cell, to eat the flesh of the animal is haram. تو شیطان نے فوراً وسوسہ ڈالا کفار کے دلوں میں, یہ کیسے ہیں نبی, اپنے آپ کے ذبح کیا ہوا حلال ہے اور اللہ کا مارا ہوا حرام ہو گیا. فوراً وسوسہ ڈال دیا, فوراً. بات میں سن رہی ہے, اللہ اگر کسی جانور کو مار دے تو کیا ہو گیا, حرام ہے, جس کو قرآن کہہ رہا ہے, اور اگر مسلمان ذبح کرے تو حلال ہو گیا, تیرے ہاتھ کا حلال اور اللہ کے مارا ہوا حرام. یہ بات وسوسہ کس نے ڈالا, شیطان نہیں, وہ ان دا برین آف دا مشرکین مکہ. اور جب اللہ نے جواب دیا, قلو مما ذکر اسم اللہ علیہ, کھاؤ اس گوشت کو جس کو تم نے ذبح کرتے ہو اللہ کا نام لیا ہے, کیوں تم نے ذبح کیا ہے تو اس کے اندر سے جو خون تھا اگر وہ نہ نکلتا تو تم اس کا گوشت کھاتے تو تم بیمار ہو جاتے. The animal had lots of blood inside. When you slaughter, all the blood comes out. If it don't comes out the blood, what will happen? You will get, those who eat the flesh, you get sick. اللہ نے کیا کہا, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اللہ کا نام لے کر ذبح کر لو اور خون نکل جائے جانور, اگرچہ تم نے بسم اللہ کہا اور 3 رکھ کے بجائے 1 کاٹی 2 نہیں کاٹی, حلال نہیں ہوا. یاد رکھو مسئلہ, ایون دے سے بسم اللہ اللہ اکبر, بٹ یو کٹ اونلی, سپوز ٹو بی 3 ویز دیر, یو کٹ اونلی 1, 2 از اسٹل دیر, चिल्मत हलाल। क्यों? उस अल्लाह नहीं चाहते हैं मेरे बंदों को कोई तकलीफ हो, इसीलिए वो एनिमल हराम किए गए जिसका गोश्त खाना क्या है, हराम है। क्योंकि जैसा गोश्त, जैस जितना उनका गोश्त खाओगे ऐसी बुरी आदत तुम्हारे अंदर आएगी। अगर पोक खाओगे तो पोक जैसी आदत आएगी, लायन खाओगे लायन जैसी, क्रो खाओगे क्रो जैसी। जैसे जैसे जानवर खाएंगे वैसे तुम्हारे अंदर में बैड आदतें अखलाक पैदा होंगे। अल्लाह ने इस उम्मत का लिहाज रखा। सर्टन एनिमल ओनली व्हेन यू स्लॉटर एंड द ब्लड कम आउट इज हलाल, अदरवाइज नॉट। एक और जगह पर शैतान ने बस मैं तुमको उसका जवाब दिया। दूसरा जवाब, एक तो हो गया कुरान क्या है, दूसरा कुरान में क्या है, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम। तुम ए मुशरिकी, तुम जितने लोग दुनिया में बुतों की बात गैरुल्लाह की, तुम सब आगे उसमें, सहाबा से यानी मक्का के लोगों से लेकर कयामत तक जितने भी गैर मुस्लिम सब उसमें आ गए। वमा ताबुदूना, और जिसकी तुम पूजा करते हो, एंड दोज थिंग्स यू वर्शिप द आइडल्स, तुम और तुम्हारे गॉड्स सब के सब जहन्नम में जाएंगे। कहां जाएंगे? ऑल ऑफ देम विल गो वे जहन्नम। फौरन शैतान ने वसवसा डाला कुफार के दिमाग में, यानी मुशरिकी ने मक्का के दिमाग में वसवसा डाला। क्या डाला? तब तो हम तो यहूद लोग तो उज़ैर अलैहि सलाम को पूजा करते हैं, क्रिश्चियन तो ईसा अलैहि सलाम की पूजा करते हैं, मक्का के मुशरिकीन फरिश्तों की पूजा करते हैं, तो हम तो कितने खुशनसीब हैं, जहन्नम में हमारे साथ ईसा भी नऊज़ बिल्ला होंगे और उज़ैर भी होंगे, फरिश्ते भी आएंगे, मरियम भी आएगी, तो जहन्नम हमारे जन्नत बन जाएगी। आई बात में अल्लाह तबारक व ये बात अब्दुल्लाह इब्ने ज़बारा ने कही थी कि जब तुम यही कह रहे हो अल्लाह पाक तुम्हारे अल्लाह यूं कहता है, तो शैतान ने इनके दिमाग में वसवसा डाला। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फौरन जवाब दिया, इन्नल्लज़ीन सबकत 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 लहुम मिनल हुस्ना लहुम मिनल हुस्ना उलाइक अनहा मुबअदून मुबअदून मिनन नार ला यस्मऊन हसीसहा। जिनके बारे में हमने जन्नत लिख दी है वो जहन्नम से दूर दूर दूर, उनको जहन्नम में जलने वाले चीखने वालों की आवाज भी नहीं आएगी। सब के लिए मेरी बात समझ आ रही है ना? तो ये है जवाब। अल्लाह के नबी जानबूझकर तो कहने वाले नहीं है, चलो और साथ में अगर अल्लाह के नबी ये कह देते तो फिर पूरे कुरान पर सवाल हो जाता। चलो हम मान लेते, लेकिन शक तो लोगों में हो जाता ना, डाउट तो पैदा हो जाता कि कुरान में शैतान की भी वही है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसलिए शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात मुझे बड़ी पसंद आई, और उनके बेटे शाह अब्दुल कादिर ने तर्जुमा में लिखा, जिसको एक तो तमन्ना का तर्जुमा तिलावत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की और उसमें शैतान ने दखल डाल दिया, इंटरफेयर कर दिया और ये अल्फाज डाल दिए तो नबी ने ये कहे तो सब सजदे में। दूसरा शाह साहब फरमाते हैं, मैं इसको समझाता हूं कि तमन्ना के माना ख्याल है, ख्याल है और ख्याल का सच होना जरूरी। आपके दिमाग में कोई तोहफा आ जाए तो क्या उसका होना जरूरी है? नो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, चल मिसाल देता हूं, यहां शाह साहब ने उसकी मिसाल दी, शाह वलीउल्लाह साहब ने उसकी मिसाल, शाह अब्दुल कादिर साहब ने, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि इस साल हम कहां जाएंगे, उमरा करने के लिए जाएंगे मदीना मुनव्वरा से। तो सुबह ऐलान किया फजर के बाद, क्या तो मैंने ख्वाब देखा हम कहां जा रहे हैं, मक्का अहराम बांधकर हदी लेकर उमरा करेंगे, तो इस वक्त इस साल हम उमरा ही करेंगे। लेकिन जब वहां पर गए 10,000 सहाबा तो उमरा करने नहीं दिया, हुदैबिया से वापस आ गए हदी को जबा करके, वो तो नेक्स्ट ईयर गए नहीं गए, तो उनका जो ख्याल था वो पूरा नहीं हुआ। ख्याल का पूरा होना जरूरी नहीं है, याद रखना। जो कहा था हम आपको गालिब कर देंगे मेरे नबी, तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, इस साल हम जीत जाएंगे
लेकिन नहीं हुआ। वो तो अल्लाह कह रहे मैंने कहा गालिब कर देंगे, ये तो नहीं कहा था इस लड़ाई में फतेह मक्का में गालिब कर देंगे, और कहां गलबा मिला? फतेह मक्का में। तो ख्याल का आना और उसका आ तो सकता है, लेकिन पूरा करना और पूरा होना जरूरी नहीं है। शाह वलीउल्लाह साहब ने इसी को कहा है कि शैतान की बात ही सामने ना आए, जबान पर कोई कलिमात की बात ही बयान करना ना पड़े। क्या तर्जुमा क्या शाह साहब ने, वमा अरसलना मिन कब्लिक मिन रसूलिन वला नबीन, हमने कोई रसूल और कोई नबी नहीं भेजा। रसूल किसको कहते हैं? जिस पर न्यू शरीयत कम्स, नई शरीयत आए, नए कानून आए, नए रूल रेगुलेशन आए और उन पर किताब भी आए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम किताब भी आई, नई शरीयत भी आई, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम। ये रसूल है और नबी उसको कहते हैं जो फॉलो अप करते हैं। ये नबी का इंतकाल हुआ, उनकी जगह ये उन्हीं की किताब लेकर चलने वाले, उनको नबी कहते हैं। जैसे हारून अलैहिस्सलाम, नबी मूसा पर किताब उतरी है तो उनके फॉलोवर कौन है? हारून है। हारून नबी है लेकिन उन पर कोई किताब नहीं उतरी है। ये सबसे मशहूर तारीफ है जो उलमा ने मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई है। वमा अरसल, हमने कोई रसूल कोई नबी नहीं भेजा, इल्ला इज़ा तमन्ना, मगर जब ख्याल आता था। क्या तर्जुमा कर रहा हूं मैं? जब आरजू करते थे कि अभी ये करना है। ख्याल तो आता है आप सबको, वो भी बशर थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर थे, ख्याल हर नबी बशर होता है। ख्याल आता है, तमन्ना का तर्जुमा शाह वलीउल्लाह साहब कर रहे हैं। ख्याल आता था, उस ख्याल में अलक शैतान फी उम्नियति, शैतान उस ख्याल में दखल देता था। मालूम होता है कुरान में नहीं, वही में नहीं, किसमें? तो ख्याल में दखल देता था। फयनसखुल्लाहु मा युल्की शैतान, अल्लाह तबारक व ताला शैतान के उस डाले हुए ख्याल को खत्म कर देता था और अल्लाह अपनी बात को सच दिखाता था कि हमने तुम्हें कहा है कि तुम उमरा में जाएंगे ख्वाब में। नबी का ख्वाब भी तो वही है ना, नबी का ख्वाब भी तो वही है ना, हमने तुम्हें, लेकिन ये नहीं कहा था कि इस साल जाओगे। कहा था? नहीं कहा था। ये तो तुम्हारा ख्याल था कि इस साल हम उमरा गएंगे, हमने ये तो नहीं कहा था इस साल तुम जीत जाओगे। हमने कहा जरूर है कि तुम गालिब आ जाओगे, लेकिन कब वो तो अल्लाह जानता है, वो तो फतेह मक्का में हुआ। अल्लाह फिर अपने हुक्म को और अपनी आयत को साबित कर देता है और शैतान के इस ख्याल को दूर कर देता है। और मेरी तफसीर समझ में नहीं आई, सुम्म युहकिमुल्लाह। आप लोग तो तलबा नहीं, वरना बहुत मजे से सुनते। आप मैं ऐसी बात बयान कर रहा हूं, मदरसे के तलबा होते ना तो उनको लुत्फ आता, क्या बात हुई आज, ये बात हर एक नहीं समझा पाता है। मैं फख्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर ये बात समझ में आती है। हमारे उलमा ने, उलमा देवबंद ने हजारों मेहनत की है और समझाया असल क्या है। हाँ, वल्लाहु अलीम हकीम, और अल्लाह जानता है, वो हिकमत वाला है। अल्लाह के कुरान में कोई दखल दे नहीं सकता, कोई नहीं, चूंकि अल्लाह ने, वो कहता हूं, मैं कहा करता हूं, आज भी वेकफिल में मेरा बयान था, मैंने उनको कहा कुरान में पारे हैं, कुरान अपना तारुफ करता है, पारा नंबर वन, पारा नंबर टू, पारा नंबर थ्री, पारा नंबर, और नबी भी तो कुरान है, ये कुरान सामने है, वो चलता फिरता कुरान है, नबी चलता फिरता कुरान है, ये मसब में है, ये मसब में है, वो उनके सीने में, वो चलता फिरता। क्या कहा देता ईशा ने, पूछा साहबी ने अल्लाह के नबी के बारे में क्या कहते हो? कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कान खलुकुहुल कुरान, उनके अखलाक पूरा कुरान था, पूरा कुरान था, गोया वो पूरा चलते फिरता कुरान था। तो मैं कहा करता हूं ये कुरान तारुफ कराता है पारों से, और वो कुरान अपना तारुफ करता है अपने यारों साहबा से, यारों से, पारों से साहब, अपने यारों से। और मैं कहा करता हूं इस बात को कि जब तुम पढ़ने के लिए बच्चे होते थे तो मदरसे में गए तो आप कुरान लेकर गए थे कि तख्ती लेकर गए थे? तख्ती लेकर जाते हैं ना, बगदादी कायदा। आप पहले जाकर भी मदरसे में आपने दाखिल ले लिया, कुरान उठा के उस्ताद जी कुरान पढ़ा, कैसे आएगा? तख्ती तो आती नहीं है, ला तख्ती पहले, अलीफ से लेकर या तक पर, मैं क्यों पढ़ूं? अरे इसके बगैर तुझे कुरान के अल्फाज समझ में नहीं आएंगे। अलीफ से लेकर या तक पर तो कुरान समझ में आएगा, क्या कह रहा हूं मैं, ऊपर से नीचे जा तो कुरान समझ में आएगा। अगर नबी को समझना है तो अबू बकर का अलीफ और अली की या चारों खिलाफत को पढ़ तो नबी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा कि मेरा नबी कौन है, उनका मकाम क्या था। मेरी बात समझ में आ रही है? साहबा को ऐसे रखे थे। मैं कहा करता हूं कुरान में देखो, सूरह बकरा में यहूदियत के रिजेक्ट और रद्द होने का जिक्र है, सूरह आले इमरान में जिक्र है ईसाइयत के रद्द का, सूरह निसा में लेडीज मसाइल बयान किए गए, सूरह माइदा में देखो फिकह के मसाइल समझाए गए, कुरान की सूरत में देखो, सूरह कसस में देखो क्या बताया, तारीख का इलम है उसमें, सूरह अंफाल में देखो जिहाद का जिक्र है, सूरह फुरकान में देखो हक और बातिल का जिक्र है, फुरकान हक और बातिल का, सूरह सब में तकवा का जिक्र है, सूरह नूर में नूर का पैगाम दिया जा रहा है। ये सारी बातें साबा में थी। फरमाया कुरान के, ये तो सारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये सूरत के नाजिल करने का मकसद क्या, इसका मकसद क्या, व्हाट इज पर्पस ऑफ द सूरा, व्हाट इज पर्पस। अगर तुम्हें देखना हो ये कुरान की सूरतों में ये सारी चीजें हैं, मेरे नबी के यारों में ये सारी चीजें नजर आएगी। अब्दुल्ला इब्न सलाम को देखो, यहूदियत की रद्द का जिक्र है उसमें, वो यहूदियत के रद्द का बड़ा आलिम था, वो गोया के अब्दुल्ला इब्न सलाम जो है वो सूरह बकरा है, सूरह बकरा पढ़ना है अब्दुल्ला इब्न सलाम को पढ़ो जी, सूरह आले इमरान पढ़ना है सूरह सलमान फारसी को पढ़ो, ईसाइयत के रद्द में बड़ा आलिम था वो। अबू बकर को पढ़ना है, अबू बकर को सूरह निसा औरतों के मसाइल को पढ़ना है तो सूरह आयशा पढ़ो, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, सूरह कसस पढ़ो जिसके अंदर में तारीख का इलम है तो अबू बकर सिद्दीक को पढ़ो, तारीख का बड़ा आलिम है। सूरह फुरकान हजरत सूरह फुरकान कौन है, सूरह उमर है, सूरह उमर फारूक है, जो फारूक का माना है हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला। सूरह नूर पढ़ो, जिन्नूरन सूरह उस्मान हजरत उस्मान है। सूरह सब पढ़ो, तकवा हजरत सूरत अली कौन है, हजरत अली तकवा से पढ़े। फिका के मसाइल सूरह मायदा में हजरत अब्दुल्ला मसूद को पढ़ो, फिका के बड़े मौलवी थे, बड़े अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा फिका के मसाइल जानने वाले कौन है, अब्दुल्ला मसूद है, अब्दुल्ला ने। अगर जिहाद का इलम अम्फाल में है तो खालिद बिन वलीद को देखो, वहां भी यहां भी अल्लाह पाक ने नबी के यारों को ऐसा बनाया कि कोई कुछ कर सकता नहीं है। तफसीर में नहीं जाता अभी कुरान की, बहुत अजीब बात है, अल्लाह के नबी कौन थे, कुरान कौन था, दो कुरान, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां मैं तो बात कर कहां पहुंच गया, लियजअल मायुल की शैतान, चलो इसके साथ आयत भी खत्म कर देता हूं। अच्छा क्या तर्जुमा है, शैतान जो अपनी तरफ से मिला देता है उसकी वजह से उन लोगों को आजमाए। देखा अल्लाह क्या कह रहे हैं, शैतान जो बातें उन कुफार के दिमाग में डालता है, फितनतन लिल्लजीना, किन लोगों के, फी कुलूबिहिम मरद, जिनके दिल कैसे बीमार है, हार्ट अटैक का मसला नहीं कह रहा हूं, बीमार का मतलब क्या है, जिनके दिल कुफर से निफाक से बड़े हैं, वल कासियत कुलूबहुम, जिनके दिल बहुत हार्ड है, हार्ट यानी मुनाफिक और काफिर का जिक्र कर रहे हैं यहां, इन लोगों के दिलों में शैतान वसवसा डालता है। अल्लाह कह रहे हैं मैं इन शैतान के वसवसों को इन लोगों के लिए फितना 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 बन जाता है, जाओ जहन्नम में। वइन्नज़ ज़ालिमीन लफ़ी शिक़ाक़िम बईद, और ये जालिम लोग बहुत दूर की गुमराही में चले गए शैतान की बात मानने की वजह से। वरना जो आगे जो मोमिन का जिक्र करते हैं, वली अलम अल्लजीन उतुल इल्मा, और जिनको इल्म दिया गया कुरान का, जिनको अल्लाह ने चूज कर लिया है ईमान के लिए, अन्नुल हक मिन रब्बिक, वो क्या कहते हैं, ये कुरान हक है मेरे रब की तरफ से, वो कभी भी कुरान के ऊपर उंगली उठाते नहीं है, कुरान के खिलाफ बोलते قرآن جیسا نازل ہوا آج تک اور قیامت تک لفظ بلفظ ویسا ہی باقی رہے گا، کوئی نہ زبر نکال سکتا ہے نہ زیر، نہ نقطہ نہ تشدید، قرآن باقی رہے گا. یہ کہہ رہے انہ الحق میں ربک، اللہ کیا کہہ رہے فیؤمنو بہ، پھر وہ قرآن پر کیا لاتے ہیں ایمان لاتے ہیں. فتخبت لہ قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے. مطمئن کا کیا معنی؟ وہ اللہ ان کے دلوں میں ٹرینکولیٹی، سکون، پیس پیدا کر دیتا ہے. میرا اللہ تیرا کلام ہے، ہم مانتے ہیں اور مانیں گے قیامت تک، اسی پر ہماری موت بھی آئے گی. آئی بس سمجھ کے اندر میں؟ یہ تیسرا گروپ مومنین کا، پہلا منافق، پھر غیر مسلم، اس کے بعد وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم کی. تو نے میرے قرآن کو مانا اور اس مذہب والے قرآن کو مانا اور چلتے پھرتے قرآن میرے نبی کو مانا، اب اللہ تیرے لیے ہدایت کا راستہ کھولے گا. تو آ، تو نے بلیو کر لیا، اب یہ قرآن تیرے لیے ہدایت بن جائے گا. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ یہ قرآن، ابھی تو آگے خالی ترجمہ کر لیتا ہوں، اس لیے کہ خالی اسی کی لگتی آیت. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، جو لوگ کافر ہیں وہ تو ہمیشہ قرآن میں شکی کرتے رہتے ہیں. آج اعتراض کیا، کل اعتراض کیا، آج قرآن پر، کل قرآن پر. قرآن ایسا ہے، جسے میں نے بھی بہت ساری مثال دی، سلمان رشدی کی دے دی، بہت سارے مسلم بھی ایسے ہیں، بہت سارے مولوی کا ذکر میں نے کر دیا ہندوستان میں 1,00,000 پیسوں میں قرآن کے اندر میں اعتراض. اس طرح غیر مسلم بھی پی ایچ ڈی کرتے اسلام پر، کیوں؟ اسلام کے خلاف انگلی کرنے کے لیے، قرآن پر، نبی پر، نبی کے صحابہ پر. فرمایا ہمیشہ یہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں وہ شک میں ہیں قرآن سے. حتی تاتیہم الساعۃ بغتۃ، کب تک؟ اچانک قیامت ان کے اوپر آ جائے گی، یا اچانک یاتیہم عذاب یوم عقیم. عقیم کس کو کہتے ہیں؟ عقیم کے معنی وہ عورت جس کو بچے نہ ہو، اس کو بانج کہتے ہیں، عقیم کہتے ہیں عربی میں. یعنی عذاب آ جائے گا جس دن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شادی تو کر لیکن فائدہ نہیں ہوا، بچے نہیں ہوئے، جو مطلب ہے تزوج الودود الولود کا، بچے نہیں ہوئے. فرمایا یہاں بھی عذاب یوم عقیم، جس دن میرا عذاب آئے گا نا، کوئی اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے، نہ کوئی پڑوسی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی. خطرناک دن ہوگا. کیوں؟ الملک یومئذ للہ، اللہ کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ ملک آج اللہ کا ہے، کنگڈم از بلونگس ٹو اللہ، حکومت اللہ کی ہے. یحکم بینہم، وہ جیسا چاہے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، کون سی جہنم میں جانا ہے، کہاں جانا ہے، وہ اللہ فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، کہاں جائیں گے؟ جنت النعیم میں جائیں گے. اب جنت 8 قسم کی ہے، الگ الگ نام ہے. جنت النعیم میں کیا کیا ہے؟ بہت ساری تفسیر ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، denied our Qurans، فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے کون سا ذلت والا عذاب ہوگا. ایک تو ایسے ہی باہر کسی اکیلے آدمی کو مار دیا تو کسی کو پتا نہیں چلا، پولیس نے مارا، اور یہ کہ پولیس اب کے سامنے پورے گاؤں کو جمع کر کے ڈنڈے مارے، تو مار بھی پڑی، ذلیل بھی ہوا. ساری دنیا کے سامنے اللہ ذلیل کرے گا اور ان کو مار بھی پڑے گی. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، قرآن سے محبت نصیب فرمائے. آج ہمارا سبق ہو گیا 57 تک، آیت 57 تک سورۃ الحج کی. انشاءاللہ اب اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے صحابہ کا ذکر ہے، پھر ان پر کیا ہوا، کیسا قتال ہوا وغیرہ وغیرہ آگے بیان کر رہے ہیں، ان کو اللہ کیا انعام دے رہے ہجرت کا، اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذو الجلال والاکرام، یا حنان یا منان. اللہ تیری محبت میں بیٹھے ہیں، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کر رہے ہیں. اللہ ہمارے بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ اس میں بوڑھے بھی جوان بھی سب کو قبول فرمائے، بوڑھوں کو عافیت نصیب فرما، جوان کو صحت نصیب فرما، سب کو صحت نصیب
نصیب فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ، دن تو آج گزر جائیں گے، بڑھاپے میں بھی گزر جائیں گے، جوانی میں بھی، لیکن تیرے قرآن کی محبت واپس ملنے والی نہیں ہے. اللہ ہمیں قرآن سے وابستگی نصیب فرما، قرآن پر پکا ایمان نصیب فرما، قرآن کو ہمیں سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما، اس کی ایک ایک باتوں کو اپنی آنکھوں دلوں سے لگانے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تو نے قرآن کی دعوت کے لیے قبول کیا ہے مجھے، اے اللہ تو اس کو مکمل بھی کرانا، اللہ تو قبول بھی کر لینا، اللہ تو اخلاص بھی دے دے، اخلاص بھی دے دے، اور لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما. جو بات کہی جاتی ہے اللہ، اللہ تیری توفیق سے کہتا ہوں، اے اللہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو معاف کر دینا، تو معاف کر دینا. اللہ میں صحیح سچی بات کہنے والوں میں سے بنا دے، صحیح سچی بات کہنے والوں میں سے بنا دے. ہمارے علماء کو قبول فرما، صلحاء کو قبول فرما. ہمارے علماء نے جتنی محنت کی ہے قرآن کی پیچھے، حدیث کے پیچھے، اللہ فقہ کے پیچھے، سب کو قبول فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ اس قرآن کی برکت سے اس مسجد کو آباد فرما، اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما. اے اللہ جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں محبت و پیار کے ساتھ، اللہ سب کو قبول فرما. جہاں قیامت کے دن مسجد پکارے گی، امام تو آ گیا، مسجد بھی آ گئی، اس میں نماز پڑھنے والے کہاں ہیں؟ اے اللہ ان کو بھی مسجد میں بٹھا کر جنت میں داخل کر دینا، پل صراط پر پار کر کے جنت میں داخل کر دینا. ساری دنیا کی مساجد جنت میں جائے گی، اس لیے کہ یہ تیرا مکان ہے، یہ دنیا میں ختم نہیں ہوگا، اس کو کعبۃ اللہ کی زمین سے ملا کر جنت میں داخل کیا جائے گا. ہم سب کو اس میں بٹھا کر کشتی کی طرح، پلین کی طرح جنت میں لے جانا. یا اللہ ہمیں عافیت دے، صحت دے، سکون دے، ہمارے گھروں میں برکت دے، ہمارے آل اولاد کی، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما. لوگ جہاں جہاں سن رہے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل، گھروں میں، گھر سے باہر، جہاں کہیں، سب کو قبول فرما، سب کا سننا قبول فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما. جہاں جہاں لوگ ہم سے قرآن اور حدیث کی وجہ سے، ایک علم کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تو تیری شان شان ان سے محبت عطا فرما. یا اللہ دنیا میں بھی، اے اللہ ہمیں قبول فرما، قبر میں بھی آسانی فرما، قیامت میں بھی قبول فرما. اے اللہ بے انتہا حساب، بے انتہا ثواب نصیب فرما، اور حساب کتاب، اور اسی طرح جہنم سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد علیہ وسلم.